नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
इसराइल हमास के बीच ताजा संघर्ष से जहां अमेरिका और अरब देशों के संबंधों में दरार पड़ती दिख रही है, तो वहीं रूस और चीन इन बदलते समीकरणों का फायदा उठाने की फिराक में दिख रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इसराइल रवाना होते ही बड़ा झटका तब लगा जब जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीनी नेताओं ने उनसे होने वाली बैठक रद्द कर दी। इस बीच रूस और चीन ने भी इसराइल से संयम बरतने और युद्ध विराम की अपील की, लेकिन हमास के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। इन बदलते समीकरणों के बीच मध्य पूर्व में रूस और चीन की क्या भूमिका नजर आ रही है, इस पर बात करते हैं जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर संजय भारद्वाज से। प्रोफेसर भारद्वाज, इसराइल हमास संघर्ष में रूस और चीन की भूमिका कैसे देखते हैं आप? मध्य पूर्व में बदलते समीकरणों के बीच ये दोनों देश अपने लिए कोई मौका देख रहे हैं क्या?
देखिए, अगर मोटे तौर पे देखते हैं तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका, जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है, उसका और अमेरिका का दबदबा रहा है। चाहे सऊदी अरबिया के साथ संबंध हो, चाहे यूएई के साथ संबंध हो, सब जगह इनका अपना दबदबा रहा है। लेकिन और यही एक सबसे बड़ा फैक्टर था कि पिछले कुछ समय से, खासकर पिछले दो दशक से, अमेरिका इसराइल के मुद्दे पर अरबियन वर्ल्ड, खासकर यूएई, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, इन सब देशों से अमेरिका इसराइल के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। उसमें अब्राहम अकॉर्ड हुआ या एडम अकॉर्ड हुआ, ये कई तरीके के समझौते हुए, और अभी तक जो अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट था उसको अमेरिका सक्सेसफुली फिलिस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट करने में सक्सेस हुआ। लेकिन चूंकि अब बदलते परिप्रेक्ष्य में और उभरते चीन को देखते हुए, चीन ने मिडिल ईस्ट में अपना दखल शुरुआत कर दी, और खासकर ईरान के साथ में चीन ने अपने रिलेशंस कल्टीवेट किए, क्योंकि चीन निश्चित रूप से एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और चीन को नियमित तेल का आयात करना है, और उस तेल के आयात के लिए गल्फ कंट्रीज या मिडिल ईस्ट से ज्यादा बढ़िया सोर्स नहीं हो सकता। तो क्योंकि अमेरिका का यहाँ पे प्रभुत्व रहा है, उसको मिनिमाइज करने के लिए चीन ने सबसे पहले ईरान के साथ रिश्ते कल्टीवेट किए, और उसी के साथ साथ ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच भी एक डायलॉग कायम किया और उसमें मीडिएशन का भूमिका निभाई। लेकिन चूंकि अभी तक अमेरिका का सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छा संबंध रहा है और सऊदी अरेबिया को अमेरिका इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर साबित करता रहा है, चीन इस बात से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड में अल्टरनेटिव डिस्कोर्स कायम करने का प्रयास किया। खासकर मैं इंडिकेट करता हूँ कि इस्लामिक समिट हुआ जिसमें मलेशिया, टर्की एंड ईरान तीनों देशों ने एक एक इस्लामिक समिट बुलाया। उसमें पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया था, पाकिस्तान ने उसमें आखिरी में पार्टिसिपेशन नहीं किया। यानी कि चीन इस ताक में था कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें एक नया एक लीडर तैयार किया जाए, उसमें या तो वो लीडरशिप मलेशिया ले या टर्की ले या ईरान ले। लेकिन चूंकि अभी जो हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें ईरान एक बहुत सक्रिय, बहुत एक्टिव भूमिका निभा रहा है, तो ये बात उभर के आ रही कि ईरान इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने के लिए कोशिश कर रहा है, और ये डेवलपमेंट अब खासकर मुखर हो रहा है। चूंकि जिस तरीके से इसराइल गाजा पट्टी में एक्शन कर रहा है और जिस तरीके से अभी हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ है उसमें भी एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन है, उसको ईरान उसको उसका फायदा उठाना चाहता है। जो मुस्लिम वर्ल्ड का सेंटीमेंट है उसको अपने पक्ष में करके अरब वर्ल्ड का एक अपने आप को लीडर साबित करके आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी तरफ जो इसराइल और अमेरिका है वो कोशिश कर रहा है कि हमास और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को एक तरीके से इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जिहादिस्ट अटैक बता रहा है, और यही बात साबित कर रहा है कि जो हॉस्पिटल पे भी अटैक हुआ है वो भी कट्टरपंथी जिहादी इस्लामिस्ट का अटैक है अपने अपने फेवर में सेंटीमेंट करने के लिए, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ये बात साबित कर रहा है कि जो अटैक हुआ हमास के माध्यम से अटैक था, और चूंकि वर्ल्ड में एक 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 सेंटीमेंट है कि कोई देश आतंकवाद के खिलाफ समर्थन रखता है और एक सहमति आतंकवाद के मुद्दे पे बनी हुई है, और आतंकवाद को ज्यादातर देश जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जोड़ के देते, चाहे वो आईएसआईएस हो, तालिबान हो, तहरीके तालिबान हो, या हमास हो, या हिजबुल्ला हो, और या सीरिया में जो लड़ाके, ये सब इन सबको आतंक संगठनों की श्रेणी में रख के अमेरिका और इसराइल देखते हैं और कहते हैं कि इनसे जो लिबरल वर्ल्ड है, जो डेमोक्रेटिक और सेकुलर वर्ल्ड है, उनको खतरा है। तो एक ये डिस्कोर्स, एक नैरेटिव वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से है कि ये जो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। उसमें चूंकि चीन का इन मुद्दों पे एक अलग रुख रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में आतंकवादियों का मुद्दा हो या हमास के मुद्दे को फलिस्तीन से देखने की कोशिश कर रहा है, वही काम रूस भी करता है। पहले फॉर्मर यूएसएसआर था, वो भी अरबियन वर्ल्ड को समर्थन देता रहा, लेकिन चूंकि आफ्टर कॉलप्स ऑफ यूएसएसआर रूस इस पे थोड़ा शांत हो गया था, और यही एक फैक्टर था कि इजराइल और अरबियन वर्ल्ड के साथ में जो शैथल्य आया, जो तनाव शैथल्य आया, उसमें अमेरिका सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम रहा।
क्या रूस इसमें अपना ये फायदा भी देख रहा है कि अगर ये युद्ध की आग मध्य पूर्व में फैलती है तो दुनिया का ध्यान रूस यूक्रेन जंग से हटेगा, अमेरिका और यूरोपीय देशों का भी यूक्रेन को सपोर्ट करना और मुश्किल हो जाएगा?
देखिए, ये बात निश्चित रूप से एक दूसरा मोर्चा खोलना वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए चैलेंज बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जो यूक्रेन को जो नाटो कंट्रीज से सप्लाई हो रहा था उनको अगर इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट होता है, इजराइल और उसको हमास को दूसरे कट्टरपंथी संगठन साथ देते, तो निश्चित रूप से इससे रशिया को, चीन को, या जितने भी अथॉरिटेरियन प्रोग स्टेट है उनको फायदा होगा। लेकिन ये भी बात है कि जो अगर अरबियन वर्ल्ड में अशांति होती है तो ये जो जितने भी देश हैं जो अरबियन वर्ल्ड के तेल पर निर्भर करते हैं, खासकर चीन, उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। चीन निश्चित रूप से लीडरशिप चेंज करना चाहता है, लेकिन अरबियन वर्ल्ड में बहुत अशांति नहीं चाहता। रशिया निश्चित रूप से अपने भू राजनीतिक और भू रणनीतिक फायदे के लिए अरबियन वर्ल्ड को हवा दे रहा है, और ये हवा अमेरिका और इसराइल के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज हो रहा है। भारत पिछले कुछ वर्षों से मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, खासकर पिछले दो दशक से, जब से भारत और अरबियन वर्ल्ड, आप ये कहिए अरबियन वर्ल्ड में यूएई, सऊदी अरबिया और साथ ही साथ इजराइल के साथ भी संबंध अच्छे रखने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि अभी ये अगर, और ये भी देखिए कि दो तीन बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं भारत मिडिल ईस्ट के साथ करना चाहता था, पहले U2I2 का प्रोजेक्ट था जिसमें इजराइल, यूएई और अमेरिका, इंडिया का एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था। दूसरा G20 में जो सबमिट हुआ उसमें मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात हुई, जो भारत को मिडिल ईस्ट जोड़ते हुए यूरोपियन कंट्री से जोड़ेगा। ये कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट भारत मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज के साथ में लाना चाहता था। पहले भी भारत प्रयास कर रहा था, चाबार पोर्ट का प्रोजेक्ट ईरान के साथ ओपन किया, क्योंकि भारत सेंट्रल एशियन कंट्रीज या अफगानिस्तान में ईरान के माध्यम से पहुंच बनाना चाहता था। लेकिन अगर अरबियन वर्ल्ड में अशांति होती है तो निश्चित रूप से भारत का जो आर्थिक हित है, जो एक मार्केट और इन्वेस्टमेंट का जो अपने इंटरेस्ट है, वो उसको एक बड़ा चैलेंज मिलेगा।
जी, रूस यूक्रेन जंग में इजराइल का रुख रूस के प्रति नरम ही रहा, लेकिन हमास के आतंकी हमलों के कई दिन बाद रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और उसमें भी हमास के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। हमास और ईरान से रूस के रिश्ते जगजाहिर हैं, चीन का रुख भी इस विवाद पर कुछ यही है, तो दोनों देश हमास की निंदा करने से क्यों बच रहे हैं?
देखिए, निश्चित रूप से मैंने यही बात कहा कि हमास की निंदा करने से इसलिए बच रहे हैं कि जो अरबियन वर्ल्ड है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, वो निश्चित रूप से इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन जो यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें खासकर जो सीरियन लड़ाके हैं या जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं रशिया के साथ एक एक अलायंस के रूप में दिखे, वो लिबरल वर्ल्ड के साथ। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि एनिमीज एनिमी इज फ्रेंड। तो इस्लामिक वर्ल्ड का या आप कट्टरपंथी जो जिहादी ताकते हैं उनका अमेरिका के साथ सीधा वॉर है, और उस और रशिया का भी अमेरिका के साथ यूक्रेन के इशू पे एक सीधा वॉर हो रहा है। तो निश्चित रूप से एक 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 अलायंस इन 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 रेडिकल फोर्सेज रशिया और जो रोग स्टेट्स है उनका बनता जा रहा है, जिसमें रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, ये सब कंट्रीज। तो अभी जो आग, ये चिंगारी जो जली है, जो उठी है, उसका फायदा भी निश्चित रूप से रूस और चीन उठाना चाह रहा है, लेकिन सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं चाह रहा।
अरब देशों ने अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने से इनकार कर दिया, जो इसराइल के बाद जॉर्डन जाकर मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहते थे। कहां तो अमेरिका सऊदी अरब और इसराइल को नजदीक लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब खुद अरब देशों से उसके पुराने संबंधों में दरार पड़ती दिख रही है। रूस ने भी ताजा हालात का ठीकरा ये कहते हुए अमेरिका पर फोड़ दिया कि ये मध्य पूर्व में अमेरिका की नीति नाकाम होने का बड़ा उदाहरण है। तो कितना बड़ा झटका है मध्य पूर्व में या अमेरिका के लिए?
निश्चित रूप से देखिए, पहले से भी ये बात, ये विचार उठ रहा था कि अमेरिका अपने आप को मध्य पूर्व से विड्रॉ कर रहा है, अमेरिका का कंसंट्रेशन इंडो पैसिफिक रीजन पे है, ये एक सवाल था, और उस गैप को पूरा करने के लिए चीन अपनी दावेदारी वहां बढ़ा रहा था। लेकिन चूंकि अगर इस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, इसराइल के सामने पूरा अरब वर्ल्ड एक तरीके से कन्फ्रंटेशन में आ जाता है, और इसराइल के बजाय हमास को जो इस्लामिक वर्ल्ड अगर समर्थन देता है, तो निश्चित रूप से ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अमेरिका अपना जगह इस्लामिक वर्ल्ड से खोना नहीं चाहता, सऊदी अरबिया को अभी भी वो एक अपना एक इस्लामिक वर्ल्ड में लीडर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इनका ईरान का सीधा सीधा अमेरिका से कन्फ्रंटेशन है, उसका फायदा भी ईरान को अरबियन वर्ल्ड में नहीं देना चाहता। तो अमेरिका को बहुत कॉन्शियसली आगे बढ़ना पड़ेगा, चीन के प्रभाव को, रूस के प्रभाव को नियंत्रित रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसराइल, क्योंकि इसराइल एक बहुत ही स्ट्रांग अलायंस है, पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, इसराइल के अपने जो अस्तित्व का सवाल है या उसकी सोवरेनिटी का सवाल है उसको भी प्रोटेक्ट करके अमेरिका को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो अपना वर्चस्व कायम रख पाएगा।
जी, तो इसराइल हमास संघर्ष से दुनिया दो खेमों में बटती साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसका फायदा उठाने में रूस और चीन पीछे नहीं रहना चाहते। प्रोफेसर भारद्वाज, शुक्रिया आपका।